नमस्कार भारत, रविवार 16 अक्टूबर, मैं हूं निखिल रंजन। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन का आज दूसरा दिन, बिम्स्टेक के सदस्य देश भी होंगे चर्चा में शामिल। सीरिया में शांति के लिए रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बातचीत के पहले दौर में कोई नतीजा नहीं निकला। वाराणसी की बैठक में घायल रात भर पहुंचते रहे अस्पताल, पुलिस महकमे के आला अधिकारी निलंबित।
उधर से जनता इधर जा रही थी, मतलब जनता सारी इकट्ठा हो गई, तब उधर से पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया तो जनता इधर भागने लगी, उसी में ये दुर्घटना हुई।
सुनिएगा गौहर जान को, उनकी आवाज और उन पर बने नाटक के कुछ कलाकारों की जुबानी।
देखिए, उस जमाने में सबसे इंटेलिजेंट, कल्चर्ड, आर्टिस्टिक औरतें तवायफें ही थीं।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। गोवा में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल भारत और रूस के बीच 16 अहम द्विपक्षीय समझौते हुए। भारत और रूस ने 200 कामोव हेलीकॉप्टरों के संयुक्त उत्पादन, 4 नौसैनिक फ्रिगेट और वायु रक्षा प्रणालियों की खरीदारी के लिए करार पर भी दस्तखत किए। ऊर्जा, बिजली, जहाज निर्माण, अंतरिक्ष और स्मार्ट सिटी पर सहयोग के कई करारों पर वार्ता के बाद दस्तखत किए गए। रूस और भारत के बीच चरमपंथ को बर्दाश्त नहीं करने पर भी सहमति बनी है। उत्तर प्रदेश के चंदौली और वाराणसी के बीच राजघाट पुल पर कल एक धार्मिक आयोजन में मची भगदड़ में 24 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख जताया और मरने वालों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे और घायलों को मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। इस हादसे के बाद एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और वाराणसी के कई आला पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। सीरिया में शांति के लिए रूस, अमेरिका और मध्य पूर्व की क्षेत्रीय ताकतों की कल स्विट्जरलैंड में एक बैठक हुई, लेकिन बातचीत युद्ध विराम को लागू करने पर बिना किसी ठोस प्रस्ताव के खत्म हो गई। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने बैठक के बाद कहा कि तनाव के बावजूद बातचीत साफ दिल से हुई और नए विचारों पर चर्चा हुई है। अब अगली मुलाकात सोमवार को होगी और जॉन केरी ने उम्मीद जताई है कि इससे सीरिया में शांति के लिए अलग तरीके सामने आ सकते हैं। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने नए विचारों को दिलचस्प कहा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चुनावों में धांधली की जा रही है ताकि उनकी प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन जीत सकें। ट्रंप के खिलाफ यौन उत्पीड़न के नए दावों के सामने आने के बाद उनकी ये टिप्पणी आई है, जिसके बाद उनके समर्थन में कमी देखी जा रही है। न्यू हैम्पशायर में एक रैली में ट्रंप ने बिना सबूत के अपने दावों को फिर दोहराया कि मीडिया संस्थान उनके खिलाफ नकारात्मक खबरें दिखा रहा है ताकि क्लिंटन के चुनावी अभियान को फायदा पहुंच सके।
Hillary is running for president in what looks like a rigged election. It looks to me like a
हिलेरी राष्ट्रपति पद के लिए लड़ रही हैं, मुझे लग रहा है कि एक धांधली भरे चुनाव जैसा लगा। इस चुनाव में भ्रष्ट मीडिया धांधली कर रही है और पूरी तरह से गलत आरोप और झूठ फैला रही है और उनकी कोशिश है कि क्लिंटन को राष्ट्रपति चुन लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून हेती में समुद्री तूफान मैथ्यू से हुई भयंकर तबाही की ओर ध्यान खींचने के लिए वहां पहुंचे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बान हेती के लिए आपात सहायता मुहैया कराने की अपील करेंगे, जो दुनिया के गरीब देशों में शुमार है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो पर रविवार की सुबह पहला कार्यक्रम लेकर के निखिल रंजन हाजिर है। स्वागत है आप सबका। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के गोवा में चल रहे सम्मेलन में आज बंगाल की खाड़ी से सटे देशों के समूह बिम्स्टेक के नेता शरीक होंगे। उनकी ब्रिक्स देशों के नेताओं से मुलाकात होगी। इससे पहले कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। रूस और भारत के बीच 16 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात को भी सार्थक बताया। पूरा ब्यौरा भेजा है गोवा से बीबीसी संवाददाता शुभज्योति घोष ने।
मेजबान भारत के नौते पर ब्रिक्स सम्मेलन में आए बिम्स्टेक यानी द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नेता आज ब्रिक्स देशों के नेताओं से रूबरू होंगे। बिम्स्टेक में भारत के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार सदस्य है। इन नेताओं के लिए ये मंच जितना अहम है उतना ही उनका मौजूदगी भारत के लिए मायने रखते है। भारत प्रशासित कश्मीर के उरी में हुए हमले के बाद पाकिस्तान में होने वाला सार्क सम्मेलन स्थगित हो गया। इस फैसले के वक्त श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान जैसे देश भारत के साथ खड़े नजर आए। भारत की कोशिश से इन देशों के पास मौका है कि वो एक नए मंच पर अपने हितों की बात आगे बढ़ाए। इसके पहले कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में चरमपंथ को लेकर भारत की चिंता को प्रमुखता के साथ रखा। मोदी ने कहा कि चरमपंथ ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर भारत और चीन में मतभेद हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर इस मुलाकात को लाभदायक बताया। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता बिका स्वरूप ने मीडिया को बताया,
President Xi agreed that terrorism and violent extremism were on the increase. He alluded to the threat from
बिका स्वरूप कह रहे थे कि राष्ट्रपति शी इस बात पर सहमत हुए कि चरमपंथ और अतिवादी हिंसा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को चरमपंथ रोकने के लिए अपने प्रयासों में इजाफा करना चाहिए। राष्ट्रपति शी ने कहा कि इस मुद्दे पर हमारी रणनीतिक बातचीत जारी रहनी चाहिए। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को लेकर भी संक्षिप्त बातचीत हुई। विकास स्वरूप के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर वो चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। दोनों पक्षों के बीच दिल्ली में एक दौरे की बातचीत हो चुकी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दूसरे दौर की बातचीत बहुत जल्दी ही होगी और ये मददगार साबित होगी। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक रूसी कहावत को जिक्र करते हुए दोनों देशों की दोस्ती की गहराई समझाने की कोशिश की।
As they say in Russian, स्तारिय द्रुगलुचे।
मोदी कह रहे थे कि रूस की एक कहावत के मुताबिक एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर है। राष्ट्रपति हम भारत के प्रति गहरे लगाव से वाकिफ है। भारत और रूस के बीच 40,000 करोड़ रुपए ऊर्जा, बिजली, जहाज निर्माण, स्पेस और स्मार्ट सिटी समेत 16 अहम समझौते हुए। इनमें कामफ हेलीकॉप्टर और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को लेकर हुआ समझौता शामिल है। रूस ने चरमपंथ को लेकर भी भारत के रुख का समर्थन किया। भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर ने बताया,
हमें जो है रूस पे पूरा भरोसा है। हम जो दोस्ती की बात जो करते हैं उसकी अजम्पशन ये है कि रूस ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा जो हमारे हित में नहीं है। और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि उनकी जो बातचीत जो आज हुई है उसके बाद एक किस्म से हमारे वी आर सैटिस्फाइड दैट रशिया अंडरस्टैंड्स इंडियाज इंटरेस्ट।
ब्रिक्स के मंच पर भारत और रूस के रिश्तों में दिखी गर्माहट दोनों देशों के लिए आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक लिहाज से अहम मानी जा रही है। मेजबान भारत की कोशिश आज सम्मेलन में आए दूसरे देशों के साथ भी अपने रिश्तों का नई मजबूती देने की होगी। शुभज्योति घोष, बीबीसी गोवा।
बीबीसी बांग्ला सेवा के हमारे सहयोगी शुभज्योति घोष की आपने रिपोर्ट सुनी। ब्रिक्स सम्मेलन में कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात की तो द्विपक्षीय संबंधों के साथ चरमपंथ का मुद्दा भी उठाया। व्यापारिक सहयोग की भी बात हुई। ये मुलाकात और सम्मेलन में उठी बातें भारत और बाकी सदस्य देशों के लिए कितनी फायदेमंद है, इस पर चर्चा के लिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फोन लाइन के जरिए ICW के फेलो राहुल मिश्रा। राहुल, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपने रिपोर्ट भी सुनी और आप लगातार इस सम्मेलन पर नजर भी रख रहे हैं। चीन के साथ खासतौर से जो भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है चीन के राष्ट्रपति के साथ, तो उस मुलाकात में जो बातचीत हुई उससे क्या लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ मुद्दों पर या द्विपक्षीय मुद्दों पर जो दोनों के बीच में मतभेद रहे हैं हाल के दिनों में, उसमें उसको दूर करने में कोई मदद मिली होगी या मिलेगी?
देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि भारत चीन का अगर हम संबंधों का इतिहास देखें तो उसमें निस्संदेह बहुत सारी पेचीदगियां हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की ट्रेडिशनली ये कोशिश रहती है कि बहुमंची बहुपक्षीय मंचों पे जो होने वाली बातचीत है और जो सहयोग है उसको बायलैटरल रिलेशन से कोई नुकसान ना पहुंचे। और इसीलिए भारत ने पहले भी कोशिश की है कि चीन का जो NSG में समर्थन ना देना है या आतंकवाद पे भारत से अलग दृष्टिकोण रखना है, उससे जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उनमें दिक्कतें ना आए। लेकिन और इसीलिए आपने देखा कि ब्रिक्स के शुरुआत में मीटिंग से पहले भारत ने हमेशा यही कहा कि चीन के साथ वो ब्रिक्स में काम करने को तत्पर है, लेकिन इन मीटिंग्स से, जो मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती हैं, ये दूसरा पहलू है कि इन मल्टीलैटरल मीटिंग्स से द्विपक्षीय संबंधों को भी एक पुश मिलता है। इसीलिए हमेशा इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो जितनी सारी बातें हुई हैं उसमें यही कहा गया कि हम एक और मीटिंग करेंगे, हम इन बातों को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और हम अपने जो भी आउटस्टैंडिंग डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक रास्ता दिख रहा है, लेकिन वो रास्ता कितना क्लियर है और कितना हमें कहां तक, किस मुकाम तक पहुंचाएगा, ये अभी देखना बाकी है।
ये जो बिम्स्टेक के सदस्य देशों के साथ आज जो मुलाकात हो रही है ब्रिक्स के देशों के राष्ट्र प्रमुखों की, इससे आप क्या फ़ायदा देखते हैं? क्या जो सार्क में जो कमी, सार्क की बैठक ना होने से जो कमी रह गई है या जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी?
देखिए, आइडियली तो ये मीटिंग, अगर सब चीज़ें नॉर्मल रहती तो ये मीटिंग मेरा ख्याल ब्रिक्स और सार्क के बीच में होनी चाहिए थी। तो सार्क की फेलियर थी और सार्क की जगह को बिम्स्टेक ने भर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बिम्स्टेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बिम्स्टेक के देशों के लिए, जो कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है, इनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिम्स्टेक एक संगठन के तौर पर कहीं ना कहीं इसमें एक ठहराव आ गया था। और ये बहुत बड़ी बात है बिम्स्टेक के लिए कि विश्व की 5 उभरती हुई आर्थिक शक्तियां, उनके साथ एक औपचारिक डिस्कशन हो रहा है। और मेरे ख्याल से इस मीटिंग से एक नई ऊर्जा मिलेगी बिम्स्टेक को, खास तौर पे इसलिए कि ब्रिक्स के जो 3 और देश हैं, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, उनका आर्थिक, सामरिक या किसी भी लेवल पे उनका संपर्क बिम्स्टेक के जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनके साथ बहुत ही कम है, भारत को छोड़ के। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है मेरे ख्याल।
जी, ICW के फेलो राहुल मिश्रा, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। सीरिया में शांति के लिए रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की शनिवार को हुई बातचीत युद्ध विराम पर बिना किसी ठोस प्रस्ताव के खत्म हो गई है। स्विट्जरलैंड में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने बैठक के बाद कहा कि तनाव के बावजूद बातचीत साफ दिल से हुई और नए विचारों पर चर्चा हुई है। उधर तुर्की के हवाई हमलों का साथ लेकर विद्रोहियों का दल इस्लामिक चरमपंथियों के कब्जे वाले शहर दाबिक में तेजी से बढ़ रहा है। पूरा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
तुर्की के हवाई हमलों के सहयोग से सीरियाई विद्रोहियों का दल दाबिक शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर पूर्वी सीरिया में स्थित शहर दाबिक पर इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों का पिछले 2 सालों से कब्जा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेशप तैयब अर्दोवान ने पुष्टि की है कि लड़ाके दाबिक की ओर बढ़ रहे हैं, जो तुर्की की सीमा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सोशल मीडिया पर डाली गई वीडियो में दिखाया गया है कि सीरियाई विद्रोही लड़ाके हमले की तैयारी कर रहे हैं। एक विद्रोही लड़ाके ने कहा कि तथाकथित इस्लामिक स्टेट और उनके नेता अबू बकर अल बगदादी और उनके सभी समर्थकों से देश को आजाद कराने के लिए वे दृढ़ संकल्प हैं। उन्होंने कहा, घिनालिया, अजीजिया और इंशाल्लाह दाबिक के लिए युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई है। अगले कुछ घंटों में हम ये ऐलान कर देंगे कि इन सभी गाँवों को आजाद कराया गया और इस्लामिक स्टेट के नेता अबू बकर अल बगदादी के गिरोह की गंदगी से मुक्ति हो जाएगी। सीरियाई विद्रोही लड़ाके के शब्द। दाबिक शहर इस्लामिक स्टेट के लिए खासी अहमियत रखता है, क्योंकि इस्लामी भविष्यवाणियों में इसे वो जगह बताया गया है जहां कयामत के दिन मुस्लिमों और उनके दुश्मनों की जंग होगी। इस्लामिक स्टेट ने अपनी पत्रिका का नाम भी शहर के नाम पर दाबिक ही रखा है और अपनी प्रचार सामग्री में भी इस शहर का खूब जिक्र करता है। तुर्की के सहयोग से सीरियाई विद्रोही IS चरमपंथियों और सीरियाई कुर्द लड़ाकों को इस जगह से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन सितंबर के महीने में अमेरिका और रूस के बीच संक्षिप्त युद्ध विराम खत्म हो गया, जिसके बाद सीरियाई सरकारी सेना ने विद्रोहियों के कब्जे वाले एलेपो में अपनी बमबारी तेज कर दी है। सीरियाई सरकारी सेना को रूसी हवाई हमलों से मदद मिलती है। सीरिया में शांति दोबारा कायम करने के लिए अमेरिका और रूस में रजामंदी हुई थी, जिसके तहत उन्होंने मध्य पूर्व की क्षेत्रीय ताकतों के साथ कल स्विट्जरलैंड में एक बैठक की, लेकिन ये बातचीत युद्ध विराम पर किसी ठोस प्रस्ताव के बिना खत्म हो गई। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने बैठक के बाद कहा कि तनाव के बावजूद बातचीत साफ दिल से हुई और नए विचारों पर चर्चा हुई है। वहीं रूसी विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव ने नए विचारों को दिलचस्प कहा है। अब दोनों नेताओं के बीच अगली मुलाकात कल होगी और जॉन केरी ने उम्मीद जताई है कि इससे सीरिया में शांति के लिए अलग तरीके सामने आ सकते हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे अमर शर्मा।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये बीबीसी रेडियो है और आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत निखिल रंजन के साथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कल जय गुरुदेव महामानव संगम यात्रा के दौरान हुई भगदड़ में 24 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद भी कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया है, आज सत्संग का आयोजन होगा। प्रशासन का दावा है कि हादसे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के एक मंत्री ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया तो राज्य सरकार ने एक मंत्री के जरिए अपनी जवाबदेही से इनकार किया। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट सुनिए।
वाराणसी में हादसे के बाद की अगली तारीख आ गई, लेकिन पीड़ितों के जहन से दहशत का वो मंजर नहीं गया। हादसे की शिकार सोनभद्र की शीला बताती हैं कि
हम यात्रा करके हम लोग पूर से कराची हो रहे थे, रिवटी के अंदर, मतलब जहां मेरा रहने का ठिकान है पंडाल में, वहां तो इसी पुल पर धमाका हुआ था। इसलिए के शासन ने कुछ ले शासन को रोकाई दे दिया था, इसलिए मनाई लड़ने लगे आपस में, तो जो सरे से वो अपने में लड़ने भिड़ने लगे थे, इसलिए पुल पर कोई चीट गया, कोई गिर गया, फिर सबको घायल हुआ।
प्रतापगढ़ से वाराणसी आई एक अन्य घायल महिला बताती हैं कि
मतलब इधर से जा रहे थे हम लोग पूरी रैली थी, वहाँ प्रशासन जो है राजपुल के आगे वो डाट नहीं है, वही रोक दिया सब जनता को। उधर से जनता इधर जा रही थी, मतलब जनता सारी इकट्ठा हो गई, तब उधर से पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया तो जनता इधर भागने लगी, उसी में ये दुर्घटना हुई।
इतने बड़े हादसे के बाद वाराणसी प्रशासन रविवार आज सत्संग का अंतिम कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराने का दम भर रहा है। वाराणसी के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि
आयोजकों से बात की सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौके पे जाकर आयोजकों से बात करके आए हैं। 8 बजे वहां शोक प्रस्ताव होगा, उसके बाद सत्संग होगा, उसके बाद उसका समापन हो जाएगा। हम लोगों की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था वहां तैनात है, हम लोग सभी वहां लोगों को धीरे धीरे रवाना करेंगे, सेफली रवाना करेंगे।
इस हादसे पर राजनीति होते भी देर नहीं लगी। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री महेंद्र पांडे ने तो सीधे तौर पर घटना के लिए उत्तर प्रदेश की सपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
बड़ा ही गलत हुआ है, अक्षम्य है, जिम्मेवार आदमियों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि किसी काम में पुलिस व्यस्त नहीं, सारे त्योहार बीत चुके हैं और उसके बावजूद भी अगर ये बनारस जैसे तीर्थस्थल पर आने वाले लोगों का आकलन न कर पाना किसी समारोह का और इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है प्रशासन का रवैया और राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। जो भी कारण हो, पुलिस की इसमें घोर लापरवाही का ये दुष्परिणाम हुआ है। केंद्र सरकार से 2 लाख रुपये प्रति मृतक प्रधानमंत्री राहत कोष से, 50,000 घायलों को, मैं राज्य सरकार से अपील करता हूँ कि उसे 10-10 लाख रुपये प्रति मृतक मुआवजा और 2-2 लाख घायलों को देना।
तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेंद्र पटेल ने पलटवार करते हुए कुछ यूं अपनी बात रखी।
घटना तो किसी के साथ घट सकती है, इसमें सरकार और किसी पे आरोप लगाने से पहले हम कितना कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। केवल आकर के भाषण दे करके फोटो खिंचा के चले जाना ये संवेदनशीलता नहीं।
वाराणसी में पहली बार इतने बड़े हादसे के पीछे पुलिस प्रशासन की खामी को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अब सबकी निगाहें आज समाप्त होने वाले सत्संग और स्थानीय स्तर पर होने वाली पुलिस प्रशासन की तैयारियों पर हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल।
इधर कार्यक्रम के आयोजक जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग महामानव संगम ने हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने महामानव संगम के प्रवक्ता डॉक्टर राज बहादुर चौधरी से पूछा कि वहां हुआ क्या।
जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग महामानव संगम का कार्यक्रम ये था, इसमें शाकाहार सदाचार मद निषेध जन जागरण पैदल शोभा यात्रा निकाली गई थी। उस शोभा यात्रा में काशी धार्मिक नगरी होने की वजह से काफी श्रद्धालु आ गए और लोग कतारबद्ध होके अपना शहर में जो रूट निर्धारित था उस रूट से लोग जा रहे थे। संख्या ज्यादा होने के कारण गंगा नदी पर राजघाट पुल है, वहाँ लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया और इधर से लोग जा रहे थे, उसमें ट्रैफिक भी चल रही थी और काफी वहाँ अफरा तफरी मच गई जब वहाँ से लोग उधर से डाइवर्ट किए गए, इसलिए ऐसी दुर्घटना हुई।
जी, ये डाइवर्ट किसने किया?
ये प्रशासन ने किया।
प्रशासन का ये कहना है कि केवल 4,000 लोगों के लिए अनुमति ली गई थी, लेकिन वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ गए।
हाँ, ये बात सही है, उसमें ये भी दिया गया था संख्या घट बढ़ सकती है, क्योंकि ये धार्मिक नगरी होने की वजह से लोग काफी लोग आ गए कि चलो इसी बहाने हम काशी का दर्शन कर लेंगे और पैदल भ्रमण भी कर लेंगे, इसलिए ये संख्या बढ़ गई, इसका अनुमान हम सबको भी नहीं था।
डॉक्टर साहब, आप इसमें किसकी कमी देखते हैं? आयोजकों की कमी है, प्रशासन की कमी है, किस वजह से ये हुआ?
धार्मिक चीजों में कोई निश्चित अनुमान नहीं हो पाता कितने लोग आएंगे। प्रशासन चलती है, अगर वो पड़ाव की तरफ से डाइवर्ट करते तो इधर कई रास्ते थे, लोग इधर उधर से निकल जाते, वो पुल के उस पार से डाइवर्ट किए।
तो ये डाइवर्ट कब किया गया पहले से, क्या जो आपका यात्रा मार्ग तय था तब ये डाइवर्जन की बात नहीं थी?
पहले से नहीं, लोग गए वो हमें लगता है 10 बजे के बाद डाइवर्ट किया गया। ज्यादा लोग तो यही मैदान में ही थे, लोगों को रोक दिया गया जब ये सूचना आई कि भीड़ ज्यादा जा रही है, तो लोगों को रोक दिया गया। लेकिन फिर भी लोग कुछ जो उत्साह था वो लोग नहीं माने, गए और वहाँ डाइवर्ट किया गया और इधर से भीड़ गई तो बीच में वो ट्रैफिक की वजह से भी कंजेशन काफी हो गया, उसी में भगदड़ मची और थोड़ा ये हो गया कि पुल टूट गया तो लोग भागने लगे।
तो क्या ये जो भगदड़ हुई वो पुल टूटने की हवा की वजह से हुई?
नहीं, अब वहाँ डाइवर्ट किया गया तो इसलिए हुआ, लोग उधर से एयरपोर्ट से मजबूर हो गए पीछे आने के लिए और इधर से जा रहे थे वो आगे जाने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक भी चल रही थी।
आयोजक प्रशासन पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। आइए आईजी लॉ एंड ऑर्डर हरिराम शर्मा से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं।
जो श्रद्धालु का जुलूस जा रहा था वह समागम में सम्मिलित होने के लिए, तो जो राजघाट एक लोहे का पुल है वहां पर किसी महिला गिर गई जिससे स्टैम्पेड हो गया और इस स्टैम्पेड में 24 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई और इस परिप्रेक्ष्य में एक जांच हाई लेवल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की गई है जो कि सभी कहां पे त्रुटि रही, कहां पे चूक हुई, उन सभी की वो जांच करेगी। भीड़ नियंत्रण के क्या वहां पर उपाय थे, क्राउड कंट्रोल के कहां सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई, जांच रिपोर्ट आने के बाद सही स्थिति पता होगी। मेरे पास ये लाठी चार्ज करने की तो सूचना मैंने जो जनपद के अधिकारियों से वार्ता की है, लाठी चार्ज की तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है। मुझे जो बताया गया है वो किसी महिला की गिरने से स्टैम्पेड हुई है, मुझे यही बताया गया है।
आईजी हरिराम शर्मा जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच देर रात मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वाराणसी शहर के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसमें एसपी सिटी सुधाकर यादव, एसपी ट्रैफिक कमल किशोर, सीओ कोतवाली राहुल मिश्रा और एसओ रामनगर अनिल कुमार सिंह को भी निलंबित किया गया है।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। आइए अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं अखबारों को। अमर शर्मा अखबारों के पुलिंदे के साथ आ चुके हैं। जी अमर, क्या कहते हैं आज दिल्ली के अखबार?
जी निखिल, सभी अखबारों में रूस के साथ हुए समझौते को पहली खबर बनाया गया है, लगभग सभी अखबारों में। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की भी ये पहली खबर है, हेडलाइन है आतंक के मुद्दे पर रूस भारत के साथ खड़ा है लेकिन चीन अभी भी बाड़े पर खड़ा है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि भारत और रूस का आतंक के मसले पर एक रुख लेकिन चीन की दीवार में कोई दरार नहीं पड़ी है, बातचीत जारी रहेगी। वहीं वाराणसी में हुई भगदड़ की खबर भी अखबारों के पहले पन्ने पर दर्ज है। एक खबर है इंडियन एक्सप्रेस में जिसमें बताया गया है कि आतंक निरोधी शाखा उत्तर प्रदेश की ATS ने दिल्ली से सटे नोएडा से 6 संदिग्ध नक्सलियों को पकड़ा है और इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं और ऐसी आशंका जता रही है ATS कि इनके संबंध नक्सलियों से हैं। ATS के मुताबिक ये दिल्ली और NCR क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है।
जी
वहीं अखबार की एक अन्य खबर के मुताबिक 3 तलाक और बहुविवाह मुद्दे की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देने में काफ़ी वक्त लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 1995 के हिंदुत्व जजमेंट को फिर से देखेगा कि क्या हिंदुत्व का अर्थ एक जीवन दर्शन है। द हिंदू अखबार में एक तस्वीर छपी है, तमिलनाडु के मुडुमलाई नेशनल पार्क की है जहां पर एक 10 दिन के हाथी के बच्चे को उसकी माँ ने छोड़ दिया है, त्याग दिया है और
तस्वीर है।
उसकी देखभाल की जा रही है। वहीं एक और खबर छपी है द हिंदू अखबार में कि सरस्वती नदी का अस्तित्व था, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ताओं के एक एक्सपर्ट पैनल ने इस निष्कर्ष को कल सार्वजनिक किया है।
बहुत शुक्रिया अमर शर्मा अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए। और आइए अब अगली खबर। गौहर जान की कहानी संगीत के शिखर पर पहुंची एक महिला की कहानी है। वो पिछली सदी की एक महान गायिका थीं जिनकी आवाज़ में भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहली ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग की गई थी। अब लंदन में उनके जीवन पर आधारित नाटक का मंचन हो रहा है। इसके निर्देशक जानी मानी भारतीय रंगकर्मी लिलिट दुबे से बीबीसी संवाददाता शिवानी कोहक ने मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि गौहर जान की कहानी को नाटक में तब्दील करना क्यों जरूरी समझा।
गौहर जान का ये संगीत आज भी अक्सर कलाकार पेश करते हैं।
ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड करने वाली पहली भारतीय आवाज की मालिक गौहर जान ने 20 भाषाओं में ठुमरी से लेकर भजन तक गाए हैं। उन्होंने करीब 600 गीत रिकॉर्ड किए हैं। गौहर नाम के नाटक के निर्देशक लिलिट दुबे बताती हैं,
देखिए उस जमाने में सबसे इंटेलिजेंट कल्चर्ड आर्टिस्टिक औरतें तवाइफें ही थीं। इनका तो पेशा था म्यूजिक सीखना, लिटरेचर सीखना। जो कॉर्टिजन है और प्रोस्टिट्यूट है उसमें बहुत बड़ा फर्क है, वो एक ही चीज नहीं है।
एक आर्मेनियाई पिता और पेशेवर गायिका माँ की औलाद गौहर ने अपने संगीत से काफी पैसे कमाए। उनका रहन सहन भी उस जमाने के प्रसिद्ध करोड़पति या अंग्रेज अफसरों से मिलता जुलता था। गौहर का किरदार निभाने वाली श्याम बेनेगल की सरदारी बेगम में काम कर चुकी एक्ट्रेस राजेश्वरी सचदेव का कहना है,
बहुत ही मजबूत औरत है और जिंदगी को मुझे लगता है उन्होंने सप्तम पे ही जिया है। उनके हर सुर जो है, चाहे वो गाने का हो, गाने कंपोज करने का हो, लिखना हो, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, मुझे लगता है हर इमोशन को वो खुल कर जिए हैं। शायद इसलिए उनको बहुत तकलीफ भी हुई है इस बात की, लेकिन ऐसी जिंदगी इस पिच पे जीना हिम्मत ही इंसान ही कर सकता है।
लेकिन उस जमाने में तवायफ कहलाने वाली इन गायिकाओं पर पैसे तो भरपूर लटाए जाते थे, लेकिन कोई इनसे शादी नहीं करना चाहता था और इन्हें मर्द गायकों जैसा सम्मान भी नहीं मिलता था। शायद यही वजह थी कि गौहर ने बार बार प्यार में भी धोखा खाया। बड़ी उम्र की गौहर का किरदार निभाने वाली उस्ताद विलायत अली खान की बेटी जिला खान कहती हैं कि गौहर ने अंत के दिनों में जो अकेलापन महसूस किया, गुमनाम हो जाने का वही डर आज भी हर कलाकार को सताता है।
हम दर्द नहीं समझेंगे तो समझेगा कौन? हमने देखा है, हमने बरता है। आई हैव गॉन थ्रू इट, आई नो इट। हम सिर्फ एक्टर नहीं हैं, हम बहुत अलग नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं और फील करते हैं और डर लगता है, ताकि आगे चल के उनको ऐसा वक्त देखना ना पड़े।
अपने आखिरी दिनों में गौहर बिल्कुल तन्हा रह गई थी। उनकी गुमनाम मौत दक्षिण भारत में हुई। उनकी कहानी उस समय के समाज के माहौल में तवायफों के शोषण की दुख भरी दास्तां तो है ही, लेकिन साथ ही महिलाओं की स्वाधीनता के लिए जंग का भी प्रतीक है।
गौहर जान पर शिवानी कोहोक की इस रिपोर्ट से रविवार की ये सुबह थोड़ी सुरमई जरूर हो गई होगी, ऐसी उम्मीद है। अपना अनुभव हमें लिख भेजिएगा। और अब कार्यक्रम में समय तो बचा नहीं है, तो आइए प्रमुख समाचार जल्दी से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। गोवा में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल भारत और रूस के बीच 16 अहम द्विपक्षीय समझौते हुए। उत्तर प्रदेश के चंदौली और वाराणसी के बीच राजघाट पुल पर कल एक धार्मिक आयोजन में मची भगदड़ में 24 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। सीरिया में शांति के लिए रूस, अमेरिका और मध्य पूर्व की क्षेत्रीय ताकतों की कल स्विट्जरलैंड में एक बैठक युद्ध विराम को लागू करने पर बिना किसी ठोस प्रस्ताव के खत्म हो गई। अमरीकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चुनावों में धांधली की जा रही है ताकि उनकी प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन जीत सकें। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया अमर शर्मा ने और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं राजेश चौहान। एक घंटे बाद विश्व भारती में फिर मुलाकात होगी। निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।